तो सुधीर जी, ये बताइए कि दिल्ली में धुंध के हालात और प्रदूषण बेहद बढ़ा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये जो स्टैंडर्ड होता है उससे 90 गुना ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या हो चुका है वहाँ?
देखिए, वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि दिवाली से पहले ही, जैसे ही जाड़ा यहाँ शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ पर धुंध जो आसमान में रहती है वो छाने लगी। और उसका कारण जो बाद में पता चला वो था कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जो फसल है, जो उसके ठूंठ हैं, स्टबल हैं, उनको जला दिया। जलाने से आसमान में काफी आ गया, और चूंकि हवा पश्चिम से दिल्ली की तरफ आती है, इसलिए हवा ने वो कैरी किया और यहाँ के आसमान पर भी वो छा गया। लेकिन जब बातें आगे बढ़ी तो खोजने वालों ने दुनिया भर के कारण गिना दिए, जो कि हिंदुस्तान में अक्सर होता है कि जरा सा कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पर इतना अतिरंजनाय होती है, इतना ज्यादा काम कर दिया जाता है और फिर उसके बाद भुला भी दिया जाता है। ये एक प्रवृत्ति है हमारे, मीडिया की प्रवृत्ति मैं कहूंगा, और एनजीओ की प्रवृत्ति भी ये है कि जब समस्या है तो उसे बड़ा चढ़ा के बताओ। समस्या तो थी जो हर मौसम में होती है, और 10-15 दिन ये रहती है और उसके बाद में खत्म हो जाती है। अब ये हुआ कि दिवाली से पहले ये बन रहा था, दिवाली के बाद पटाखे चले, लेकिन इस बार पटाखे कम चले। लेकिन पटाखों पर भी बात आई कि भाई पटाखों की वजह से दिल्ली का आसमान काफी भरा भरा है और जहरीली गैस है, और फिर उसमें पीएम माने जो पर्टिकुलेट मैटर है और जो दुनिया भर की और जहरीली चीजें हैं, दुनिया भर की चीजें बताई जाने लगी कि इसमें बेरियम है, पेट को खराब कर रहा है, इसमें ये है, ये किडनी खराब कर रही है, ये फेफड़ों को खराब कर रही है, बच्चों को बचाओ। तो जब मीडिया का प्रेशर पड़ता है तो हमारे दल भी बड़े तेज हो जाते हैं, और तो जब ये शुरू हो गया तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अब जाहिर है कि दिल्ली सरकार इसके लिए जिम्मेदार बता दी गई, जबकि दिल्ली सरकार ने धुआं तो नहीं बनाया था, धुआं तो कहीं और से आ रहा था। और धुआं दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास है उसकी मनोवृत्ति ही ऐसी है कि रोज एक गाड़ी खरीदती है, एक एक घर में तीन तीन चार चार गाड़ियां हैं, खड़ी रहती है गाड़ियां, चलती है 70 लाख गाड़ियां दिल्ली के भीतर है। जो मैं कारों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मोटरसाइकिलें हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो विक्रम है जो सिर्फ डीजल से चलते हैं, मैं उन ट्रकों की बात नहीं कर रहा हूँ जो छोटे साइज के, बड़े साइज के बैन कर रखे तो लोगों ने छोटे साइज के चला रखे हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी उनको देखती रहती चले जाते मेरा धुआं उगलते हुए। तो ये सारा मिल करके जो सड़क का धुआं है वो ऊपर उठ नहीं पाता है, और ऊपर एक तरह से जो ठंडक है वो उनको ऊपर नहीं जाने देती, तो नीचे नीचे आता रहता है कोहरे के साथ में। तो ये स्थिति हो गई दिवाली के बाद में, वाकई खांसी हो गई, और जो विजिबिलिटी थी जो घने कोहरे में होती है वो बिना कोहरे के ही 50 मीटर दूर से ही वो विजिबिलिटी खत्म होने लगी। तो उस आधार पर यहाँ से लेकर के, मैं तो गया था इस वक्त आगरा की तरफ भी, तो यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर तक यही आसमान था जी। कहीं कोई राहत नहीं थी, और कार्बन ही कार्बन था, ये फील होता था, नाक में काला कालापन घुस जाता था, और माने आपके होठ सूखने लगते थे। ये तो सब अपनी जगह होता ही था।
ताजमहल वगैरह पर भी इसका काफी प्रदूषण का असर पड़ा होगा इन दिनों में।
नेचुरली जब ये चीजें उड़ती हैं और हवा से जाती हैं और नीचे बैठती हैं, तो जाहिर है कि हर छत पर, हर सड़क पर, हर आदमी के चेहरे पर, गाड़ियों के ऊपर, हर जगह ये थोड़े थोड़े बड़े छोटे छोटे बारीक कण आकर के बिराजते हैं, तो ये तो असर होता ही है। जाहिर है कि आगरा तो और भी ज्यादा धुंध भरा शहर बन जाता है, क्योंकि वहाँ कार्बन कंट्रोल है ही नहीं, वहाँ विक्रम चलता है जो मेरे कार्बन छोड़ता है। विक्रम एक छोटी सी 5 सीटर की एक ऑटो है जो चलती है, जो सिर्फ डीजल से चलती है, काली फैक्ट्री है। तो एनीवे, मेरा कहना है उसके बाद में जब इमरजेंसी मीटिंग होने लगी और दिल्ली सरकार को दूसरी चेहरा जाने लगा, तो इनके हाथ पर फूल गए, इन्होंने मीटिंग की, इमरजेंसी प्लान की कि 10 दिन तक बदरपुर पावर प्लांट बंद रहेगा जो कोयले से चलता है, 5 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं, 3 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बंद रहेंगे, और 5 दिन तक ये जो है ट्रम वगैरह ये सारे नहीं चलेंगे, जनरेटर नहीं चलेंगे, जब जनरेटर दिल्ली शहर में बहुत चलते हैं, जब बिजली चली जाती है तो वो भी कार्बन फेंकते हैं। ऐसे करके उन्होंने बहुत इमरजेंट मैटर गिनाए, और ये भी कहा कि सम माने और इवन प्लान जो हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, और दुनिया भर की चीजें मैंने बताई जाने लगी। जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री पैदा हो गई इस बीच में वो थी मास्क इंडस्ट्री, और मास्क एक फैशन स्टेटमेंट हो गया। अब पत्रकार है, रिपोर्टर है टेलीविजन का, मुंह पर मास्क लगा हुआ और रिपोर्ट करता जा रहा, तो आवाज भी सही नहीं आ रही, फिर उसने हटा दिया। भैया तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे देखिए यहाँ दिल्ली के भीतर सबके पास गाड़ियां नहीं है, लोग सड़कों पे काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये उनका रिप्रेजेंटेशन, इनका रिप्रेजेंटेशन था नाजुक नजाकत वाले मिडिल क्लास का, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की ज्यादा परवाह है और किसी को कोई मरे चाहिए। लेकिन दिल्ली में हाल ही हो गए, मास्क जो है नापैद हो गए, सप्लाई नहीं गई, इतना ज्यादा बिक गया और ब्लैक होने लगा। सेकंड चीज क्या हुआ कि एक और इंडस्ट्री आ गई, वो थी एयर फ्रेश करने वाली मशीनों की इंडस्ट्री।
अच्छा,
अब तीसरा ये कोरोना खाद जो की जाती है, जो भारत का अपमान किया जाता है, जो भारत को बदनाम किया जाता है, वो किस तरह से किया जाता है। एक चैनल ने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि कुछ हमारे यहाँ बाहर के लोग रहते हैं, गहरे दूतावासों से कनेक्टेड लोग रहते हैं और दुनिया भर के लोग रहते हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी में बोल करके ये बता रहे थे कि हमको तो सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही है और उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, इससे और बच्चों को बड़ी भाई बड़ा एम्पैथी दिखा रहे थे, जाहिर उसे बुलवाया जा रहा था तमाम चीजों को, खेलने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है हमारी, और भैया तुम्हारे लिए तो खेलने के लिए, लेकिन ये सारा प्रोजेक्ट किसका है, ये डेवलपमेंट का कार्बन प्रोजेक्ट किसका है, ये वेस्ट से आया हुआ प्रोजेक्ट है जो भारत ने अंधे आंख अंधी करके कांग्रेस के जमाने से आज तक अप्लाई किया हुआ, और उसी की वजह से अपने यहाँ तो सब कुछ ठीक है, यहाँ की कि कार्बन ही कार्बन है, दिल्ली रहने लायक जगह नहीं है, और मैंने राइट टू ब्रीथ ये आने लगा, तो सांस लेने का हमें मौलिक अधिकार दीजिए भैया, सांस तो तुम्हारी बॉडी से बायोजेनिक है, छपी आती जाती है, इसके लिए हफ्ती जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन जरूर चाहिए आपको, और उसके लिए तुमने क्या कर रखा है, गाड़ियां खरीद रखी है, कॉन्क्रिटाइजेशन कर रखा है पूरी दिल्ली का, हरा कम से यहाँ पे, और अगर कोई जरा सा भी मैंने जगह खाली मिलती है तो उसमें बिल्डिंग बना डालते हो। तो मेरा ये कहना है कि एक अपॉर्चुनिस्टिक जो मिडिल क्लास है ये उसका चौंचला था और एनजीओ उसी को फीड करते हैं, इसलिए उनकी इंडस्ट्री भी बन गई पूरी की पूरी। दिल्ली सरकार कहने लगी कि हम सड़कों को सफाई करेंगे, वैक्यूम क्लीनर, मैकेनाइज्ड वैक्यूम क्लीनर, अरे भाई कर ली तुमने, गलियों में कौन जाएगा।
सुदेश जी, लेकिन आज दिल्ली की हालत बेहतर बताई जा रही है, वहां पर धुंध।
मैं आपको यही कहने वाला हूँ, इस कहानी को मैं यही अंत करूंगा कि ये न सरकार के किए हुआ, न केंद्र सरकार के किए हुआ, न आर्टिफिशियल बारिश से हुआ, ये कुदरत की कहानी थी, भगवान ने अपने आप ही हवा चला दी, हवा अच्छी चल रही है आज, ठंड कम हो गई है और वो फॉग सारा जितना भी स्मॉग कहते थे वो सारा हट गया है। मैं अपने सामने की बिल्डिंग को साफ साफ आंखों से देख पा रहा हूँ बिना चश्मे के, जबकि उससे पहले चश्मे से भी वो नहीं दिखाई दे रही थी, तो उस नजर से ये ईश्वर की कृपा ही है, मनुष्य ने तो निश्चित रूप से कबाड़ा कर दिया है, लेकिन कुदरत अभी भी अपने नियमों से चल रही है जिससे लगातार छेड़छाड़ होती है, तो जब तक पूरे विकास के नक्शे को नहीं बदला जाएगा तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता।